नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के कारण विपक्ष के 3 विधायकों को सत्र से निलंबित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंटेंट क्रिएटर्स को सशक्त बनाने के लिए नए प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स कॉर्नर का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट पर हुए पत्थरबाजी मामले में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और 53वां विश्व पुस्तक मेला कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विपक्ष के नेता सोम दत्त, जरनैल सिंह, संजीव झा और कुलदीप कुमार को सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा उत्पन्न करने के कारण सत्र से निलंबित कर दिया। श्री गुप्ता ने कहा कि इन नेताओं ने सत्र के दौरान सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसके कारण ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय सदन की गरिमा, अनुशासन और अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से लिया गया, जिससे दिल्ली विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमानुसार चल सके। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रसार भारती के वेव्स प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर पर व्यापक सराहना मिली है और इससे 5,000 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है। कंटेंट क्रिएटर्स को सशक्त बनाने के लिए डीडी न्यूज पर नए प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स कॉर्नर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य रचनात्मक सामग्री को प्रदर्शित करना और इसे बढ़ावा देना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रचनाकर अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
इस रिफॉर्म में कंटेंट क्रिएशन का, जिसको पुरानी भाषा में हम प्रोग्रामिंग कहते थे, प्रोडक्शन कहते थे, उसका एक नया तरीका 2026 में प्रसार भारती अपनाएगी। इसमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट होगा, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, प्रसार भारती और इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं, उनका ओरिएंटेशन चेंज होगा मोर टुवर्ड्स द इंडस्ट्री।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये नया मंच कंटेंट क्रिएटर्स को सहयोग देगा और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होगा। एक रिपोर्ट।
क्रिएटर्स कॉर्नर पहल का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके तहत प्रसार भारती और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच साझेदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण और उसके प्रसार को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाचार, संस्कृति, कला तथा साहित्य, संगीत और नृत्य, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े विषयों पर कंटेंट दिखाया जाएगा। यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर प्रसारित होगा। हर एपिसोड में अलग अलग विषयों पर आधारित 4 से 6 रील्स या वीडियो शामिल होंगे। इससे डिजिटल क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक विश्वसनीय मंच मिलेगा और प्रसार भारती के व्यापक नेटवर्क के जरिए उनके कंटेंट को देश भर तक पहुंचाया जा सकेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद कुमार।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने आज कहा कि विधानसभा सदन में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड और नाकामी उजागर हुई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सिख गुरुओं को सम्मान देने पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई।
पहले गुरुओं के सम्मान पर चर्चा से भागे, तब प्रदूषण की आड़ ली और आज जब प्रदूषण पर चर्चा हो रही है जवाब ना देना पड़े, इसलिए आम आदमी पार्टी फिर सदन छोड़ के भाग गई है। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी सदन को डिरेल करके दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा ना हो, फैसले ना हो, ऐसा प्रयास करती है जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में होने नहीं देगी।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज कहा कि सरकार दिल्ली को भारत की स्टार्टअप राजधानी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने ये बात नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय NSUT में आयोजित दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव 2026 के शुभारंभ में कही। श्री सूद ने कहा कि आज देश में लगभग 125 यूनिकॉर्न हैं और करीब 2 लाख ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्हें भारत सरकार की आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि लगभग 45% स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में है, जो समावेशी विकास को दर्शाता है।
दिल्ली का एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बने, दिल्ली का युवा केवल नौकरी की तलाश करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, और ये कहने से नहीं होगा। इसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम जहां पर सभी विश्वविद्यालय में हो रहे अलग अलग नवाचार, अलग अलग इनोवेशंस को एक दूसरे के साथ मदद करते हुए, एक दूसरे के साथ हैंड होल्डिंग करते हुए हम एक इकोसिस्टम डेवलप करें, और उस इकोसिस्टम को सरकार अपनी स्टार्टअप पॉलिसी 2025 जिसमें हम अगले 5 साल के लिए 325 करोड़ रुपए के प्रावधान करने और 2035 तक दिल्ली में 5,000 स्टार्टअप्स को स्पेस देने के लिए, ग्रूम करने के लिए हमारा प्रयास है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राम भक्तों के एक जत्थे को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। इस यात्रा में 35 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं, जिन्हें वाल्मीकि चौधरी सरपंच समिति द्वारा अयोध्या भेजा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा सनातन आस्था, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक एकता का सशक्त संदेश देती है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के दर्शन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा को मजबूत करते हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर देश की सनातन परंपरा और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग द्वारा 4 मॉडल धूल मुक्त सड़क कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इस कॉरिडोर के तहत सड़कें पूरी तरह पक्की होंगी, साथ ही बेहतर फुटपाथ व्यवस्था और हरियाली तथा ग्रीन बेल्ट तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस कदम से धूल प्रदूषण प्रभावी रूप से नियंत्रित होगा। लोक निर्माण विभाग के अनुसार इन सड़कों की सफलता के बाद दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों को चरणबद्ध तरीके से धूल मुक्त बनाया जाएगा। विभाग ने बताया कि ये कार्य स्वच्छ हवा, बेहतर सड़कें और सुरक्षित दिल्ली की दिशा में एक अहम कदम है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राजधानी में नई पाइपलाइनों पर हो रहे इंटरकनेक्शन के कारण कई जगहों पर आज शाम से कल सुबह तक जल की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि पंजाबी बाग क्लब, पंजाबी बाग जलाशय, रामदेव मार्ग, ख्याला बीपीएस और नजफगढ़ इलाके में ये काम चल रहा है, जिसके कारण रजौरी गार्डन, कीर्तिनगर, नारायणा विहार और इसके आसपास के क्षेत्र में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। बोर्ड ने आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगवाने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली में तोड़फोड़ अभियान के दौरान तुर्कमान गेट पर हुए पत्थरबाजी मामले में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच शुक्रवार की नमाज को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संवेदनशील स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 53वां विश्व पुस्तक मेला कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 9 दिवसीय ये मेला इस महीने की 18 तारीख तक चलेगा। ये मेला भारत और विश्व भर के प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा।
9 दिनों तक चलने वाले विश्व पुस्तक मेले में 35 से अधिक देशों के 1,000 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे। इस वर्ष मेले का विशेष आकर्षण भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और बुद्धिमता @75 विषय पर आधारित प्रदर्शनी है। इसके तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित 500 से अधिक पुस्तकों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रदर्शनी सशस्त्र बलों को केवल भारत की सीमाओं के रक्षक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मजबूत स्तंभ के रूप में भी प्रस्तुत करेगा। यह विश्व पुस्तक मेला भारत और दुनिया भर के प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों और सांस्कृतिक जगत से जुड़े लोगों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदूषण को लेकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले विधायकों को जहां मार्शलों के जरिए सदन से बाहर निकाला गया, वहीं तीन विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र के पांचवें एवं आखिरी दिन राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विनियोजन विधेयक 2026 को सदन पटल पर रखा और पारित किया गया। वहीं अनुपूरक मांगों को भी मंजूरी मिली। फांसी घर के मुद्दे पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट सदन में रखी गई और न्यायालय शुल्क विधेयक व दिल्ली जन विश्वास विधेयक, दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की गई। सदन में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर व प्रदूषण को लेकर भी वक्तव्य रखे गए। वहीं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में सदन को अवगत कराया। कार्यवाही पूरी होने के बाद शीतकालीन सत्र को स्थगित कर दिया गया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने और मेज पर चढ़ने, वैल में आने व सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण विपक्षी सदस्य सोमदत्त, जर्नैल सिंह, संजीव झा और कुलदीप कुमार को शीतकालीन सत्र की विशेष अवधि के लिए सदन से निलंबित किया जाता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के कारण सदन की कार्यवाही पहले 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। दोपहर 1 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो आम विधायक फिर से हंगामा करने लगे। भाजपा ने विपक्ष की नेता आतिशी पर गुरु तेग बहादुर का अपमान करने का आरोप लगाया था, जिसके कारण विधानसभा की कार्यवाही बाधित रही थी। विशेष उल्लेख में मामला उठाते हुए दिल्ली विधानसभा में आज मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय ने बताया कि इलाके के अधचीनी, खिड़की गांव, बेगमपुर, हौजरानी सहित कई जगह मिलावटी पानी आ रहा है, जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि सरकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है और अगले 2-3 वर्षों में 7,000 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले 11 महीनों में दिल्ली सरकार ने 7,212 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने अनुपूरक मांगों को रखा और एक एक करके सभी मांगों को सदन में से मंजूरी दी गई। इसके साथ ही दिल्ली विनियोजन संख्या 1 विधेयक 2026 को सदन में रखा व पारित किया गया। सदन में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर भाजपा विधायक कुलवंत राणा ने चर्चा की शुरुआत की। त्रिलोकपुरी से भाजपा विधायक रविकांत ने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि सरकार के काम का सराहनीय है और कई मोर्चों पर भाजपा सरकार ने नए सिरे से काम शुरू किए हैं। भाजपा विधायक अशोक गोयल ने आरबीआई से समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दिल्ली के बजट के प्रावधानों पर सरकार के कामकाज प्रशंसनीय है। अभिभाषण पर दिल्ली की मुख्यमंत्री सदन की नेता रेखा गुप्ता ने सरकार के कामकाज को रखते हुए कहा कि ये सरकार काम करने में विश्वास रखती करती है, जबकि पिछली सरकार ने हमें जर्जर ढांचे वाली सरकार दी थी। सदन में फांसी घर को सजा को लेकर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट प्रद्युमन सिंह राजपूत ने रखी और इस पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये मामला न केवल एक बड़े ऐतिहासिक दावे से संबंधित है बल्कि इस विधानमंडल और इसकी समितियों के अधिकार और गरिमा और कामकाज से भी जुड़ा हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने सदन में प्रदूषण पर वक्तव्य दिया और सरकार द्वारा लिए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के कारण विपक्ष के 3 विधायकों को सत्र से निलंबित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंटेंट क्रिएटर्स को सशक्त बनाने के लिए नए प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स कॉर्नर का शुभारंभ किया। और 53वां विश्व पुस्तक मेला कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।